नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। भारतवर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3,76,40,000 डॉलर का योगदान देकर बकाया राशि का समय पर भुगतान करने वाले सम्मानित देशों की सूची में शामिल हुआ। और भारत की अंकिता रैना मुंबई ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बंसीलाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विकास और समृद्धि के पथ पर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहा है। श्री गुर्जर ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे विकसित भारत का लक्ष्य तय समय पर पूरा हो सकेगा। उन्होंने सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी बात की, जिनका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। श्री मोदी के शाम 5 बजे से सदन में जवाब देने की उम्मीद है। लोकसभा में कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि सरकार अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी ये टिप्पणी आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई, जब राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के कृषि विभाग में 5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने कथित घोटाले के बारे में महाराष्ट्र के एक मंत्री और एक विधायक द्वारा दिए गए बयानों का हवाला दिया। श्री चौहान ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि ये पहली बार है जब वो इसके बारे में सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बारे में उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसकी जाँच अवश्य होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि ये संतोष की बात है कि भारत दुनिया में खोपरा उत्पादन में प्रथम देश बन गया है और सरकार खोपरा को प्रभावित करने वाली बीमारियों पर नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। इस बीच राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने महाकुंभ की घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पूरे देश से अच्छी प्रक्रिया मिल रही है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब तक सरकार ने देश के लगभग 743 जिलों में विभिन्न पदों पर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पायलट योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कई भागीदारी कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए और 28,000 से अधिक लोगों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल जनवरी से शुरू हुए दूसरे चरण में 80 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री व्यूराम वहागे द्वारा आज दोईमुख विधायक नाबाम विवेक की मौजूदगी में जिला अस्पताल परिसर दोईमुख में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का और 100 दिवसीय टीबी विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर डॉक्टर्स से अपने कार्यस्थल पर ड्रेस कोड चुनने का आग्रह किया। श्री वागे ने कहा है कि ड्रेस कोड लागू करने से वे आम लोगों से अलग दिखेंगे और उनकी सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने डीएमओ से अस्पतालों में सबसे अधिक बार आने वाले रोगियों की पहचान करने का आग्रह किया, जो क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सबसे आम बीमारी की पहचान करने में और मदद कर सकता है। स्वास्थ्य शिविर में आज स्थानीय समुदाय को परामर्श, जांच और उपचार सहित कई तरह की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। 100 दिवसीय टीबी विरोधी अभियान का उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रारंभिक पहचान और उपचार को बढ़ावा देने के साथ ही टीबी से जुड़े गलतफहमियों को भी दूर करना है।
सबसे पहले तो मैं यहाँ का लोकल एमएलए को और यहाँ का डीएमओ जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आज यहाँ में एक मेगा हेल्थ कैंप हम लोग करने जा रहा है। ये हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोगों का ऑनरेबल लोग जो एमएलए लोग है सभी लोग करने जा रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा है ये पब्लिक के लिए जो सुविधा, कुछ लोग यहाँ में हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं उन लोगों के लिए ये ओपन जगह में उनको सुविधा दे रही हो, तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए पब्लिक। डॉक्टर का कमियां है मैं हमेशा बोलता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, कमियां होने के बावजूद भी जो डॉक्टर लोग सेवा कर रहे हैं उसको हम लोग सराहना करना चाहिए। और हम लोग उसका जो अब इस तरह का जो मेगा हेल्थ कैंप कर रहा है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हेल्थ कैंप कर रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। मेरा तरफ से सभी अरुणाचल वासियों को यही गुजारिश करूंगा कि मैं इसका फायदा जरूर उठाए ताकि वो अपना हॉस्पिटल में अगर दूर दराज है तो गाड़ी नहीं है, नहीं जब पहुंच सकता है तो वो इसका फायदा जरूर उठाए। मैं तो आप लोगों को ये अपील करूंगा कि जैसा मैंने बोला है कि एप्रेंट बनने से अपना पहचान होता है एक डॉक्टर का।
दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाले विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना शनिवार को होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 1,80,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 220 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स, मुफ्त उपहार और कीमती धातुओं को जब्त किया गया है। यह वर्ष 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज कुमार शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उसकी छवि खराब करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार किए गए हमले के बाद आयोग की ये टिप्पणी आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रत्येक मामलों में 1,50,000 से अधिक कर्मियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा है कि चुनाव अधिकारी निष्पक्ष तरीके से और निर्धारित मानक प्रक्रिया के भीतर काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के कथित आरोप में मामला दर्ज किया। ये मामला नई दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दर्ज की गई। पुलिस का आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के सहयोगियों द्वारा मतदाताओं को धमकाने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों का दौरा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर प्रातः 4 बजे से शुरू की जाएंगी। सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। उसके बाद दिन भर ये सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया भर में आतंकवाद और बड़े संघर्षों की चुनिंदा आलोचना की निंदा की है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय 2 बड़े संघर्षों का सामना कर रही है। इन संघर्षों को अक्सर सैद्धांतिक मामलों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इन सिद्धांतों को चुनिंदा और आसान तरीके से लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के लिए अलग अलग मानक लागू किए गए हैं। भारत इस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3,76,40,000 डॉलर का योगदान देकर समय पर अपने बकाया को पूरा भुगतान करने वाले सम्मानित 35 सदस्य देशों में शामिल हो गया है। यह योगदान पिछले महीने की 31 तारीख को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता श्री स्टीफन दुजाकिर ने कल एक दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान समय पर किए गए भारत के योगदान को स्वीकार किया। और मुंबई ओपन टेनिस 2025 में भारत की अंकिता रैना हमवतन वैष्णवी अटकर को हराकर महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में कल उनका सामना कनाडा के रेबेका मेरिनो से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।